आज है 17 नवंबर दिन रविवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता।
एक किस्म का डर तमिल और मुस्लिम्स में फिर उभर आएगा, जो इनसिक्योरिटी का फीलिंग हुआ है इसको खत्म करना होगा।
बताएंगे आपको भारत श्रीलंका संबंधों पर क्या होगा असर। अयोध्या मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। संसद का शीतकालीन सत्र कल से होगा शुरू, हंगामे के आसार।
चाहे वो हमारे देश की इकोनॉमी हो, बेकारी बेरोजगारी हो, किसानों की जो हालत है, महंगाई हो, कश्मीर का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार वहाँ इनकार कर देती है।
चर्चा होगी महाराष्ट्र की राजनीति की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में सिंगलीज बुद्धिज नेशनल पार्टी के गोटाबाया राजपक्षा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी सजित प्रेमदासा को 13 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। गोटाबाया राजपक्षा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षा के छोटे भाई हैं। ईस्टर हमले के बाद लोगों की सुरक्षा का वादा उनके चुनाव अभियान का अहम हिस्सा रहा है। उन्हें सिंहली बहुल इलाके में जबरदस्त समर्थन मिला है, जबकि सजित प्रेमदासा ने तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने पहले बयान में कहा कि वह सभी श्रीलंका वासियों के राष्ट्रपति हैं। उनके चुनाव प्रबंधक बासिल राजपक्षा ने मीडिया से कहा, लोगों ने गोटाबाया राजपक्षा को देश और देशवासियों की बेहतरी के लिए चुना है। उन्होंने कई धमकियों और असम्मान झेलने के बाद ये फैसला लिया है। ये थे गोटाबाया राजपक्षे के चुनाव प्रबंधक के शब्द। ईरान में ईंधन की बढ़ती कीमतों और राशनिंग के खिलाफ दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी करने वाली एक वेबसाइट का कहना है कि ईरान में पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन की स्थिति है। इससे पहले सरकारी न्यूज चैनल ने मीडिया पर गलत और झूठी खबरों के जरिए विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। एक अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी ने याजद शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ में 40 लोगों के गिरफ्तार होने की खबर दी थी। अन्य शहरों से भी गिरफ्तारियों की खबर है। वहीं आज सुबह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने ईंधन की कीमत बढ़ने का समर्थन किया है। मैं कहता हूं कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अगर देश की तीन ताकतों के प्रमुखों ने कोई फैसला लिया है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। हिंसा के लिए उपद्रवी जिम्मेदार हैं, जिससे सुरक्षा को भी खतरा पहुंचेगा। ये थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के शब्द। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि चीन आगामी चुनावों में मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान ने यह आरोप तब लगाया जब चीन ने ताइवान की खाड़ी से एक विमानवाहक युद्ध समूह को रवाना किया था। ताइवान में अगले साल जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका ही एक प्रांत है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच भारी मुठभेड़ हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ईंट और पेट्रोल बम फेंके। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में दिख रहा है कि नकाब लगाए प्रदर्शनकारी छतों से पुलिस की गाड़ियों पर गुलेल से पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एक मीडिया संपर्क अधिकारी के पैर में तीर लगा है। साउथ अफ्रीकन एयरवेज में दो दिनों की हड़ताल बुलाने वाली यूनियन ने अब पूरे विमानन क्षेत्र को बंद करने की धमकी दी है। नेशनल यूनियन ऑफ मेटल वर्कर्स ने एयरलाइन के साथ बातचीत में कोई समझौता ना होने के बाद ये धमकी दी है। यूनियन का कहना है कि वह दूसरी हड़ताल के लिए अन्य एयरलाइन से संपर्क कर रही है। कर्मचारियों की मांग है कि एयरलाइन उनके वेतन में 8% की वृद्धि करे और 900 लोगों को नौकरी से निकालने की योजना रद्द कर दे। इराक में राजधानी बगदाद और कई दक्षिण प्रांतों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन से जुड़ गए हैं। विरोध प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में राजनीतिक सुधार लाए जाएं। प्रदर्शनकारियों ने बसरा के दक्षिण बंदरगाह में टायरों में आग भी लगा दी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद आज मतगणना के नतीजे सामने आते ही ये तय हो गया कि गोटाभाया राजपक्षा श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। गोटाभाया राजपक्षा ने इस चुनाव में सजित प्रेमदासा को हराया है। गोटाभाया राजपक्षा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षा के छोटे भाई हैं। राजधानी कोलंबो में गोटाभाया की जीत की खबर पर लोगों ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी।
We feel so safe now, and he's the president that I always wanted.
अब हम बहुत महफूज महसूस कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैं राष्ट्रपति बनता देखना चाहती थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है।
I'm a Gota supporter, especially because I agree with his policies on security. So just wanted to show my support.
मैं गोटा भाया की समर्थक हूँ क्योंकि मैं उनकी सुरक्षा नीतियों से सहमत हूँ। श्रीलंका में जिस तरह के हमले हुए हैं, मुझे लगता है कि हमें उनके अनुभव की जरूरत है।
ये थी कोलंबो से कुछ आम लोगों की आवाजें। गोटाभाया श्रीलंका में काफी विवादित रहे हैं। श्रीलंका के चुनावी नतीजे पर मैंने वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि ये किसकी जीत है, महिंदा राजपक्षा की या गोटाभाया की?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये महिंदा राजपक्षा के ही जीत कहलाना चाहिए। वो डिफेंस सेक्रेटरी थे जब महिंदा एलटीटी के खिलाफ लड़ाई चला रहे थे। लड़ाई खत्म होने के एक साल के बाद मैं कोलंबो गया था, गोटाभाया राजपक्षा से पूछा था कि भाई आप एलटीटी दुनिया में सबसे खतरनाक संस्था समझा जाता था, उसको कैसे हरा दिए। वो मुझे बताए थे कि बड़े भाई, उन्होंने मुझे कहा गोटाभाया ये एलटीटी को खत्म कर डालो, जो चाहिए वो मांगो, मैं आपको दिलाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा मुझे चाइना से फलाना वेपन्स चाहिए, पाकिस्तान से फलाना वेपन्स चाहिए, तो वेपन्स दिए थे। और वो ये कहा है कि अगर मेरे भाई अगर नहीं होते तो ये इतना फ्रीडम मुझे नहीं मिलता और मैं कभी भी एलटीटी को हरा नहीं सकता। बात यह है कि महिंदा खुद प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन संविधान में सिरिसेना बदलाव लाए थे, वैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एक कैंडिडेट सिर्फ दो ही बार उस देश का अध्यक्ष बन सकते थे, तो महिंदा तीसरा समय वो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए अपने छोटे भाई को वो अध्यक्ष के कैंडिडेट बना के वो लड़ाए हैं, और इसका पूरा क्रेडिट महिंदा को ही जाना चाहिए।
तमिल विद्रोहियों से लड़े हैं गोटाभाया और मुसलमान विरोधी विचार भी उनके सामने आते रहे हैं समय समय पर। इस पृष्ठभूमि में यदि देखें तो श्रीलंका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अंदरूनी राजनीति है और जो वहाँ का सामाजिक धार्मिक ताना बाना है, किस तरह का असर पड़ सकता है श्रीलंका की आबोहवा पर?
मुस्लिम्स और तमिल जो है ना, बिल्कुल नाखुश होंगे ही, क्योंकि एलटीटी के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे वो तमिल्स समझते हैं, वो पूरा तमिल कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाया गया था। और गोटाभाया एलटीटी की खत्म करने के बाद वो कह रहे थे कि तमिल्स श्रीलंका में जो रहते हैं अपने लिए ईलम चाहते थे, अब जो आदमी ईलम मांग रहे हैं उनको हम तो खत्म कर डाले हैं, तो तमिल्स को कोई समस्या ही नहीं है। मुस्लिम्स भी समझते हैं कि ये गोटाभाया मुस्लिम्स के खिलाफ एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है वहाँ बोधुबाला सेना, उसके तरफदारी भी कर रहे थे बोल के वहाँ मुस्लिम्स समझ रहे थे। तो मुस्लिम्स और तमिल्स मिल के ये चाहते थे कि सजित प्रेमदासा को वोट दें और बुद्धिस्ट वोट्स 50-50 अगर स्प्लिट होंगे तो हमारे सपोर्ट के साथ सजित प्रेमदासा अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि हमेशा सिंगलीस वोट जो है ना 50-50 में स्प्लिट हुआ करता था। लेकिन ईस्टर संडे के जो ब्लास्ट और बॉम्बिंग्स वगैरह हुए हैं उससे सिंगल कम्युनिटी में एक किस्म का डर पैदा हुआ था, वो ढूंढ रहे थे एक स्ट्रॉन्ग लीडर जो ये टेररिज्म को खत्म कर सके। और अपने आप को गोटाभाया प्रोजेक्ट किए हैं कि भाई ऐसा मैं एक लीडर हूँ, अगर कोई इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी कोई खतरा पैदा करने की आशंका है तो उसको भी हम खत्म कर डालेंगे। ऐसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर का इमेज को प्रोजेक्ट करके सिंगलिस मेजॉरिटी में 50% से ज्यादा ही वोट ये जीत गए हैं। हालांकि तमिल्स और मुस्लिम्स मेजॉरिटी वो वोट सब सजित प्रेमदासा के गए हैं, तो अब एक किस्म का डर तमिल और मुस्लिम्स में अभी फिर उभर आएगा, तो ये बहुत जरूरी है तमिल्स और मुस्लिम्स में एक जो इनसिक्योरिटी का फीलिंग हुआ है ये राजपक्षा परिवार के राज में, इसको खत्म करना होगा, तभी ये आगे बढ़ सकता है श्रीलंका।
भारत श्री लंका की जो संबंध है उन संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? गोटाबाया का रुख किधर ज्यादा है, भारत के प्रति या चीन के प्रति?
गोटाबाया राजपक्षा अपने मैनिफेस्टो जब रिलीज करते समय वो कह चुके हैं, हम सब नेबर्स के साथ अच्छी दोस्ती निभाना चाहते हैं, भारत और चीन के साथ। जब महिंदा राजपक्षा एलटीटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जो वेपन्स चाहिए थे भारत नहीं दे सका, क्योंकि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, तमिलनाडु के डीएमके के कारण वेपन्स नहीं दे सके, इसलिए वो चीन और पाकिस्तान के पास जाके वो वेपन्स लाके और एलटीटी को हराए हैं। हराने के बाद काफी मदद इनको फाइनेंशियल मदद मिल चुकी है। अब ये लोगों का $8 बिलियन का कर्जा है चाइना ने इनको दिया है, और एक पोर्ट हम्बन टोटा जो वहाँ का कर्जा दे नहीं पाए, इसलिए 99 इयर्स का एक अग्रीमेंट से वो चाइना चला सकते हैं, क्योंकि उनको जब मदद चाहिए था वो चाइना दे पाए थे। तो ये समझा जाता है कि ये लोग प्रो चाइना है लेकिन ये एंटी इंडिया नहीं है। जब महिंदा राजपक्षा प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया तो हमारे भाई है और चाइना हमारा दोस्त है। मैं समझता हूँ कि गोटाबाया राजपक्षा भी इसी तरह भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अब एलटीटी नहीं रहा है और सिर्फ भारत चाहता है कि तमिल्स को भी वहाँ के इक्वल राइट्स मिलना चाहिए वगैरह। अगर गोटाबाया ये करेंगे तो फिर हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि कोलंबो पोर्ट सिटी बन रहा है चाइना फंड करके और हम्बनटोटा तो उनके कंट्रोल में है, तो सिक्योरिटी के जरिए देखा जाए तो हमें थोड़ा टेंशन हो सकता है, लेकिन श्रीलंका के सब सिंगलीज लोग हिंदुस्तान के तरफ देखते हैं, वो बोधगया जाते हैं लाखों लोग पिलग्रिम्स बनके, तो हिंदुस्तान के साथ वो अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। हालांकि गोटाबाया को देखा जाता है कि वो प्रो चाइना है लेकिन ये एंटी इंडिया नहीं है, नहीं भी हो सकता।
विश्लेषण कर रहे थे एस वेंकट नारायण, श्रीलंका मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार। दिन भर में अब रुख करते हैं भारत का। अयोध्या मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है। लखनऊ में आज हुई बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 एकड़ जमीन की पेशकश को भी ठुकरा दिया। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ में हुई बैठक में कार्यकारिणी के 2/3 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए और बैठक में फैसला लिया गया कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। बोर्ड के सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी।
मजलिस आमलानी मस्तूरा पहलुओं पर गौर करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मस्तूरा और दीगर अपेरेंट एरर्स होने की वजह से रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है, जिसमें इस पहलू का भी जिक्र किया जाएगा कि मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इंसाफ का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे बल्कि मस्जिद की जमीन के लिए इंसाफ हासिल करने की खातिर अदालत है।
बोर्ड के सचिव और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी ने बताया कि मुस्लिम पक्षकारों में से मिसबाहुद्दीन, मौलाना महफूजुर रहमान, मोहम्मद उमर और हाजी महबूब ने पुनर्विचार याचिका दायर करने पर अपनी सहमति दे दी है, जबकि कुछ एक पक्षकार बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ हैं। बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल अंसारी के बारे में पूछे जाने पर जफर याब जिलानी ने आरोप लगाया कि अयोध्या का प्रशासन उन पर इसके लिए दबाव बना रहा है। इकबाल अंसारी पुनर्विचार याचिका दायर करने के खिलाफ हैं। बोर्ड की बैठक पहले लखनऊ के नदवा कॉलेज में होनी प्रस्तावित थी लेकिन अचानक इसे बदलकर मुमताज पीजी कॉलेज में कर दिया गया। जफर याब जिलानी का कहना था कि प्रशासन ने उन लोगों को वहां बैठक करने से जबरन रोक दिया।
के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंडेम करते और मजम्मत करते कि वो ये गैर कानूनी हरकत की रात में हमारे सदर के पास कई अफसरान जिले के पहुंचे और उनका सब आप हमें बहुत अफसोस ऐसी बॉडी को जिसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है और जो मुसलमानों की मांडा बॉडी उसको रोका गया दिया।
इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड मुख्य पक्षकार है और सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने के लिए सरकार को निर्देशित किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड पहले ही फैसला कर चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगा और पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करेगा। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस हैसियत से पुनरीक्षण याचिका दायर कर रहा है, इस सवाल के जवाब में जफर याब जिलानी का कहना था,
सीपीसी नए सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रेपेंटेटिव कैपेसिटी से दाखिल किया जाए तो ये रेपेंटेटिव कैपेसिटी में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने परमिट किया था, इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था, इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने के अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इसमें सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ और वक्फ के खिलाफ।
वहीं इस मामले में आगामी 27 नवंबर को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात का फैसला लिया जाएगा कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन ले या न ले। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में ही उन्नाव में मुआवजे की मांग कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज कुछ लोगों ने UPSIDC के प्लांट के पास आग लगा दी, जिससे काफी दूर तक धुआं फैल गया। कल प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। क्या है ये पूरा मामला बताने के लिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ संदीप,
क्या है ये विवाद, बताइए हमारे सुनने वालों को।
ये एक्चुअली करीब 15 साल पहले का एक प्रोजेक्ट है ट्रांस गंगा सिटी का उन्नाव में, और उसके लिए कुछ जमीनें किसानों की अधिग्रहित की गई थी। किसानों का कहना है कि उस वक्त बहुत कम दाम पर या उनका जो चाहते थे उस तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। 15 साल, काफी 10-12 साल तक वहाँ कोई काम भी नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार किया जाए, उसको मार्केट रेट से दिया जाए या फिर कुछ दूसरा तरीका निकाला जाए। करीब 2 साल से वो लगातार इसको लेकर के बीच बीच में आंदोलित होते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। कल जैसा आपने बताया कि कल भी प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के बाद कुछ पथराव भी किया पुलिस प्रशासन पर, पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया था, उसके बाद पूरा सड़क जाम कर दिया गया था। तो कल ये काफी ये पूरा घटनाक्रम रहा। उसके बाद आज अचानक वहाँ पे जहाँ जिस जगह पर ये ट्रांस गंगा सिटी बन रहा है वहाँ कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, उसके लिए जो कुछ मशीनें लगी हैं, कुछ वाहन खड़े थे, उनमें कुछ लोगों ने जाकर के वहाँ पे आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि ये कुछ शरारती तत्व हैं और ये वो किसान नहीं है जो कि आंदोलनकारी हैं। कई उसके बाद आज फिर पथराव की कुछ घटनाएं हुई हैं।
अच्छा समीर,
ये पुलिस वाले भी घायल हुए हैं,
ये बताइए,
गिरफ्तार भी किया गया है।
ये बताइए समीर कि इस पूरे घटनाक्रम पर, किसानों की शिकायत पर, उनके दावों के बारे में प्रशासन की तरफ से क्या कहना है, सरकार का क्या रुख है?
प्रशासन का ये कहना है कि मुआवजे का कोई मामला अब नहीं अटका है। जो कुछ भी मुआवजा था, जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी, अधिग्रहित की गई थी, उनको सभी को दिया जा चुका है। अब आगे वो ये मांग कर रहे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई थी, जो मुआवजा दिया जाना था, वो सारा दिया जा चुका है। किसानों का भी ये कहना है कि उनकी मांग उस मुआवजे को नहीं है जो कि 2005 में तय की गई थी, जो कि जमीन भले 2005 में ली गई लेकिन काफी दिन तक उस पर काम नहीं हुआ, करीब 8-10 साल तक काम नहीं हुआ, और जब उनकी जमीन चली गई तो उस समय उसकी कीमत बहुत कम थी, अब उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो प्रशासन भी कह रहा है कि भाई जमीन तो आपकी तब ली गई थी और अब आज के रेट पे उसका मुआवजा कैसे दिया जाए। तो ये विवाद की जड़ जो है वो यही है मुख्य रूप से।
बहुत शुक्रिया जानकारी दे रहे थे लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और कैसे बनेगी सरकार, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। हालांकि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज मुंबई में शिवसेना के दिवंगत नेता बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर काफ़ी गहमा गहमी रही। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने मुंबई में BBC संवाददाता मयूरेश कोन्नूर से बात की।
वहाँ पे आज उद्धव ठाकरे ने सारे जो शिवसेना के चुनकर आए हुए MLAs हैं, 57 MLAs हैं, उन सबको बुलाया था। वो तो थे ही, लेकिन सभी जगह से, मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह से शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो वहां पे आए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद उद्धव ठाकरे वहां से कुछ जो क्या होगा, क्या सरकार बनेगी जो उनकी बातें हो रही हैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ, इसके बारे में कुछ निर्णायक बयान करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी आया नहीं। सभी यही कहते रहे कि हमारी सरकार आएगी, खुद उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बात की। इस बीच हमारे वहां पे हमने शिवसेना के जो सांसद है अनिल देसाई, उनसे बात की तो वो भी यही कह रहे थे कि हमारी बात चल रही है, कब तक पूरा होगा हम बता नहीं सकते। शिवसेना के एक विधायक हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब शिवसेना से चुन के आए हैं अब्दुल सत्तार, तो उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारा तो तय है, हमारी सरकार बनेगी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे और अगले हफ्ते हम अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि कैसे बनेगी इसका जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। और शिवसेना के जो प्रवक्ता संजय राउत, जो इतने दिन में हर रोज मीडिया से बात करते हैं, उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। वहां पे उन्होंने क्या कहा सुनते हैं।
बाला साहब के लिए हम कुछ भी करेंगे, आज सरकार बनेगी और जो बाला साहब को उद्धव जी ने जो वचन दिया था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, आप देखिए जल्दी ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो शिवसेना से होगा इस प्रेरणा स्थल पर आ जाएगा।
तो ये थे संजय राउत, शिवसेना के राज्यसभा के सांसद हैं। आज यही होता रहा वहां पे दादर में शिवाजी पार्क में, जहां पे बाला साहब ठाकरे का स्मृति स्थल है। लेकिन जिसकी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है सबसे ज्यादा, वहां जो घटना घटी वो ये कि उद्धव ठाकरे जाने के बाद, शिवसेना के सारे विधायक जाने के बाद, सारे नेता जाने के बाद, वहां पे दोपहर 2 बजे करीब देवेंद्र फडणवीस भी पधारे। अभी जो पिछले 5 साल वो मुख्यमंत्री थे तो हमेशा हर साल वहां पे वो जाते थे, लेकिन अब शिवसेना और बीजेपी में जिस तरह की कटुता आई है, जिस तरह के झगड़े आए हैं, और शिवसेना ने जिस तरह देवेंद्र फडणवीस की तरफ अपनी टीका का जो आरोपों का रुख जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ रखा है, तो देवेंद्र फडणवीस ने सुबह आज ट्विटर के जरिए शिवसेना को बाला साहब ठाकरे के लिए आदरांजलि जरूर दी। उन्होंने एक वीडियो तैयार किया था और जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और स्वाभिमान के बारे में जो भी बाला साहब ठाकरे ने कहा है वो बातें दोहराई थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि क्या देवेंद्र फडणवीस आज जहां पे शिवसेना के नेता इकट्ठा हुए हैं वहां पे जाएंगे, लेकिन वो आए। वो थे, उनके साथ विनोद तावड़े थे और पंकजा मुंडे थे जो भाजपा के नेता है, विधायक भी रह चुके हैं। और लेकिन कुछ बातें उन्होंने कहा नहीं, मीडिया से बात नहीं की, लेकिन अब इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस शिवसेना की तरफ इतना कुछ होने के बावजूद कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, कुछ संदेशा दे रहे हैं, क्या इसमें कुछ पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, और क्या अगर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने में सफल नहीं रहती तो बीजेपी उनके साथ वहां पे है, क्या इस तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग ये हो रहा है। इसकी बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस किसी ने अनुमान नहीं किया था, लेकिन आज वो वहां पे गए।
अच्छा मयूरेश, उधर पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक भी हुई है आज, इस पर बहुत चर्चा रही, क्या हुआ वहां पर?
जी, आज शरद पवार ने पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक बुलाई थी। कोर कमेटी के अलावा और भी उनके जो कुछ बड़े नेता है वो भी वहां पे आए थे। और वैसे आज शाम को ही शरद पवार दिल्ली जाने वाले थे क्योंकि कल से संसद का जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है, लेकिन आज उनकी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बहुत कुछ बातें हुई। अगर शरद पवार की, जैसा कहा जा रहा है, अटकलें लगा जा रही है कि अगले 2 दिन में उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, तो शायद उसमें क्या चीजें होंगी, मुद्दे होंगे, इस पे ऊपर ये बात हुई होगी ऐसा लगता है। जयंत पाटिल जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, स्टेट चीफ है राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के, उन्होंने उसके बाद पत्रकारों से बात की। आइए सुनते कि वो क्या कह रहे थे।
भाजपमध्ये गेलेले किंवा अपक्ष असणारे काही आमदार जे भाजपच्या संपर्कात आहेत,
हमारे पास जो बीजेपी में गए हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं, ऐसे कुछ विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। मैं आज उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ 15 लोग ऐसे हैं जैसा मैंने कल भी कहा था, लेकिन हम जैसे ही समय आता है हम उनके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ हमने ये पहले दिन से साफ किया है कि हमें जो मैंडेट मिला है वो विरोधी पक्ष में बैठने का मिला है, लेकिन हमारे नेता शरद पवार जो है वो इस हालात में महाराष्ट्र को स्थिर सरकार देने की प्रयास भी कर रहे हैं। ये थे जयंत पाटिल जो राज्य के मुख्य हैं एनसीपी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। आज की डेवलपमेंट एक और भी है कि शिवसेना के जो राज्यसभा के सांसद हैं वो अब तक ट्रेजरी बेंच पे बैठते थे जो एनडीए की अलायंस में थे, लेकिन हालांकि ना बीजेपी ना तो शिवसेना दोनों ने अब तक ये आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है कि उनकी अलायंस खत्म हो चुकी है और शिवसेना एनडीए से बाहर जा चुकी है, लेकिन उनको ये खत मिला है और उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है राज्यसभा की वो बदल दी गई है और अब वो ट्रेजरी बेंच से ऑपोजिशन बेंच पर जाके बैठने वाले हैं। हमने अनिल देसाई से भी पूछा जो शिवसेना के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें इस तरह का लेटर जो है वो मिला है। तो जब ये अटकलें लगाई जा रही महाराष्ट्र की राजनीति में कि देवेंद्र फडणवीस अगर बाला साहब ठाकरे की स्मृति स्थल पर जाकर कुछ पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहते हैं, उसी वक्त एनडीए ने कहा है कि शिवसेना अब ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी। तो इस दो कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी निर्णयों के साथ, घटनाओं के साथ आज महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी आगे चली गई, लेकिन सरकार कब बनेगी किसी को पता नहीं है।
महाराष्ट्र की राजनीति पर जानकारी दे रहे थे मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोनूर। इधर संसद का शीतकालीन सत्र कल 18 नवंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। 13 दिसंबर तक चलने वाले संसद के इस सत्र के दौरान विपक्ष मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा। इनमें आर्थिक सुस्ती, बेरोजगारी, कश्मीर के हालात और दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा भी शामिल है। संसद सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सदनों की प्रक्रिया और नियमों के दायरे में रहते हुए हर मुद्दे पर चर्चा के लिए एकदम तैयार है। इस पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह दी।
माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि विपक्ष जो भी मुद्दा चाहे उस पे चर्चा होनी चाहिए और हो सकती है दोनों सदनों के अंदर, लेकिन जब सदन में हम चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उन मुद्दों को लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे वो हमारे देश की इकोनॉमी हो, चाहे वो देश में बेकारी बेरोजगारी हो, किसानों की जो हालत है उसको लेकर हम सदन में उठाना चाहें, महंगाई हो, कश्मीर का मुद्दा हो, जब उन मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार वहाँ इनकार कर देती है। यहाँ तो आश्वासन देती है, सदनों में दूसरा मूड होता है, या तो यही कह दें कि हम किसी पर चर्चा नहीं करें, और अगर यहाँ मान जाते हैं चर्चा करने तो वहाँ क्यों इनकार कर देते हैं। और दूसरा मुद्दा हमने उठाया बगैर स्टैंडिंग कमेटी भेजे बगैर सरकार कहती बिल पास करो, हर बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, वहाँ चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद फिर। और तीसरा मुद्दा रखा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब पिछली दफा भी उनको नहीं आने दिए, अभी पार्लियामेंट विंटर सेशन उन पर कोई गेस नहीं है, उनको नज़रबंद रखा गया है, तो उनको आप 3.25 महीने से कैसे बंद रख सकते हैं। लिहाजा इस सेशन में फारूक अब्दुल्ला साहब को सेशन अटेंड करने की अनुमति देनी चाहिए।
ये थे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का मुद्दा भी उठाया। शीतकालीन सत्र से पहले आज दिल्ली में एनडीए की बैठक भी हुई जिसमें शिवसेना शामिल नहीं हुई। और अब खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी देखिए, अगर मैं सागर भरते हैं और आपको बता दें कि लखनऊ में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरा और आखिरी 2020 मुकाबला खेला जा रहा है, जहां अफगानिस्तान ने थोड़ी देर पहले जो उसका ताज़ा स्कोर है टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 12वें ओवर में 74 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। उधर मेज़बान हांगकॉन्ग के ली चियोक यू ने बड़ा उलटफेर करते हुए हांगकॉन्ग ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने 8वीं वरीयता हासिल इंडोनेशिया के एंथनी गिटिंग को 16-21, 21-10, 22-20 से हराया। और इसके अलावा बात की जाए अगर महिला एकल वर्ग की, तो तीसरी वरीयता हासिल चीन की चेन युफेई ने खिताबी मुकाबले में 5वीं वरीयता हासिल थाईलैंड की रथचानोक इंतनोन को 21-18, 13-21, 21-13 से हराया। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला आज होना है एटीपी फाइनल्स का, जहां पर फाइनल मुकाबला होगा आज 5वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम और 6ठी वरीयता हासिल यूनान के स्टेफानोस इस्तीसा पास से। इन दोनों के बीच जो ये मुकाबला है दरअसल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेमीफाइनल में स्टेसी पास ने सबको हैरान करते हुए तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर को कल 6-3, 6-4 से और थियम ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 7-5, 6-3 से मात दी थी।
आदेश कुमार गुप्त से खेल समाचारों के बाद चलते चलते मुख्य समाचार पुनः कमलेश मठेनी से।
बीबीसी समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में सिंगलीज बुद्धिज नेशनल पार्टी के गोटाभाया राजपक्षा ने जीत हासिल की है। बुर्किना फासो में सेना का कहना है कि उत्तरी इलाके में एक अभियान के दौरान उसने 32 चरमपंथियों को मार दिया है। सेना के मुताबिक उन्होंने गुलाम बनाकर रखी गई महिलाओं को भी छुड़ाया है। ईरान में ईंधन की बढ़ती कीमतों और राशनिंग के खिलाफ 2 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि चीन आगामी चुनाव में मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत, समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।